ऐसा बोलते हुए उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, पर वो किसी तरह की गलतफहमी इन लोगों के बीच पैदा नहीं करना चाहती थी। वहीं अमर हाथ में एक पानी का कटोरा लिए जल्दी से अंदर आते हुए बोला, आप दोनों बाप बेटे को शर्म नहीं आती मेरी बीवी के कमरे में ऐसे आते हुए, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? क्यों परेशान कर रहे हो उसको? कल्याण सिंह जी ने मुड़ते हुए कहा, क्या हम इसे परेशान कर रहे हैं? अमर जानवी के पास बैठते हुए हल्के गुस्से से कहा, और नहीं तो क्या, जाकर आप अपना खाना खाओ कल्याण सिंह। रजत जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हमें लगा बहू हमें खुशखबरी देने वाली है इसलिए हम यहां आए थे, वरना कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का, चलो कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी ने रजत जी की तरफ घूरते हुए देखा और फिर अपना गला सही करते हुए बोले, वैसे अमर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, कितनी जल्दी हम एक परपोता देने वाले हो? अमर ने इस बार और गुस्से से झल्लाते हुए कहा, मैंने कहा निकल जाओ यहां से, ये बीमार है और आपको परपोता चाहिए। इसका इतना गुस्सा देखकर रजत सिंह जी और कल्याण सिंह जी मुंह लटकाते हुए वहां से चले गए और जानवी को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर अमर के दिल को भी सुकून मिल रहा था, चलो इतनी देर से रो रही थी कम से कम हंसी तो सही। डॉट 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 समर्थ का प्राइवेट बंगला। समर्थ हाथों में खाने की प्लेट लिए उस कमरे में एंटर किया जिसमें तृषा थी। समर्थ को देखते ही तृषा की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था। उसके मन में समर्थ के लिए जो डर था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। समर्थ ने उसे डरते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहा और वो प्लेट उसके सामने रखते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेबी डॉल, वरना कैसे झेल पाओगी समर्थ रावत की सजा को? समर्थ जिस लहजे में ये बात कह रहा था, त्रिशा ने डरते हुए कसकर अपनी आंखें मूंद ली थीं और उसके होंठ डर के मारे कांप रहे थे। समर्थ ने एक नज़र उसके होंठों को देखा और फिर उसके ऊपर से उठते हुए बाहर चला गया। त्रिशा को जब महसूस हुआ कि वो चला गया है, उसने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर प्लेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोटियां कम और वर्ल्ड मैप ज्यादा लग रहा था। फिर उसने एक बार समर्थ का चेहरा याद किया, गुस्से में कैसे लाल रहता है, और फिर सर झटकते हुए जल्दी से खाने लगी क्योंकि उसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना था समर्थ से। रावत मेंशन। जानवी की हालत सुधर गई तो अमर उसे अपनी बाहों में लिए सो रहा था और अपने पापा और कल्याण सिंह जी की बातें याद करके उसके होंठों पर मुस्कान खिल गई। उसने जानवी का चेहरा अपने बिल्कुल करीब करते हुए गहरी आवाज में कहा, वैसे बीवी क्या प्लान है? कल्याण सिंह और पापा की बात पूरी होनी चाहिए। जानवी के होंठों पर अमर की गर्म सांसें पड़ रही थीं, जिससे उसकी घबराहट बढ़ रही थी। वो अमर की जुनूनी आंखों में एक मिनट से ज्यादा नहीं देख पा रही थी। वो जल्दी से पलकें झुकाते हुए बोली, मुझे शर्म आ रही है। अमर ने उसके फोरहेड को चूमते हुए कहा,
आ प ने प ती से श र मा ओ गी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? जानवी ने जल्दी से अपना सर अमर के सीने में दफन करते हुए अपनी मुट्ठियां उसकी शर्ट पर कस ली। उसका मन कर रहा था वो अमर की नज़रों के सामने से कहीं दूर भाग जाए ताकि उसे अमर के इन बेशरम सवालों का सामना ना करना पड़े। अमर ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, पर मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत और प्योर। अमर की बात सुनकर जानवी के दिल में गुदगुदी हो रही थी। अमर ने आगे थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, क्योंकि ये घर कम और बॉयज हॉस्टल ज्यादा लगता है, सब मर्द जात हैं, तुम्हें भी अजीब लगता होगा ना? जानवी को यह सुनकर हंसी आ गई और उसने अपना सर उसके सीने से निकालते हुए अमर की आंखों में देखकर कहा, नहीं मुझे अजीब नहीं लगता। अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए एक स्मर्क के साथ कहा, रियली? जैसे ही जानवी ने हां में सर हिलाया, अमर ने उसके होंठों को अपने मुंह में भरते हुए उसे खुद में उतारने की नाकाम कोशिशें करना लगा और जानवी का दिल बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा। अमर उसके होंठों को चाटते हुए हल्के हल्के से बाइट भी कर रहा था, जिससे जानवी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अगली सुबह आज समर्थ, अमर और दीक्षांत तीनों घर पर मौजूद थे, कल्याण सिंह जी और रजत सिंह जी भी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे और जानवी उनको सर्व कर रही थी। उनको जानवी ने जैसे ही सर्व कर दिया, अमर ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब बैठा लिया और फिर उसके सामने एक प्लेट लगाते हुए खुद उसे सर्व करके बोला, बीवी अगर ऐसे ही सबकी सेवा करती जाओगी तो तुम खुद दुबली हो जाओगी, पहले से ही एक मुट्ठी हड्डियों वाली हो। जानवी ने शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लिया। वो मन ही मन बोल रही थी,
क्यों उसका पति इतना बेशर्म है? कोई भी बात बोलने से पहले सोचता नहीं है कि आसपास कितने लोग बैठे हैं और उसे कितने बड़े हैं वो।